अगर हम एक ऐसे समुदाय की कल्पना करें जो मतलब जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, चारों तरफ सिर्फ राख है और इतनी भयंकर निराशा है कि लोग अंधकार में इस तरह भटक रहे हैं जैसे उन्हें कोई रास्ता ही ना सूझ रहा हो।
हाँ, एक ऐसा समय जहां सब कुछ खत्म सा लगता है।
बिल्कुल, लेकिन फिर इतिहास के पन्नों में अचानक एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव होता है और उस भयंकर अंधकार के बीच एक ऐसी रोशनी फूटती है जो ना केवल उस समुदाय को बल्कि आने वाली कई सदियों की सोच को बदल कर रख देती है।
हाँ, और यही वो बिंदु है जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है।
सही कहा।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम कोई सामान्य इतिहास नहीं खंगाल रहे हैं।
एकदम सही। असल में हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मध्य पूर्व का प्राचीन विश्व और भारी भू राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था।
साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे।
और उसी दौरान कुछ ऐसे विचार जन्मे जिन्होंने मानव मनोविज्ञान को और अध्यात्म को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया।
बिल्कुल, और हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य आधार है वो डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड के नोट्स हैं।
हाँ, जो उन्होंने प्राचीन यशाया, जिसे आइजेया भी कहा जाता है, उसकी पुस्तक पर लिखे हैं। हम विशेष रूप से अध्याय 60 से लेकर 62 तक के हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं।
और जो लोग भी इतिहास या दर्शन में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये समझने बहुत रोमांचक होगा कि एक प्राचीन ग्रंथ कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। मतलब न्याय और सच्ची धार्मिकता की अवधारणा को इतनी बारीकी से समझाता है।
हाँ, जिसे राइटसनेस भी कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यद्यपि नोट्स का मूल विषय एक धार्मिक ग्रंथ है, पर हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, हम यहाँ केवल एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह बात कर रहे हैं। हम बस इस प्राचीन साहित्य में छिपे रूप को और उसके ऐतिहासिक संदर्भों का पता लगा रहे हैं
ताकि कुछ नया सीखा जा सके। हमारा लक्ष्य बस उन विचारों की परतों को खोलना है। तो देखिए, अगर हम डॉक्टर ओसवाल्ड के विश्लेषण को देखें तो उन्होंने इस पूरी पुस्तक की संरचना को एक सिम्फनी की तरह बताया है।
एक सिम्फनी, हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी
है ना? जैसे किसी विशाल संगीत रचना में कुछ खास धुनें होती हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद लौटती हैं, इस ग्रंथ में भी कुछ मुख्य विचार बार बार सामने आते हैं। लेकिन अध्याय 59 और 60 के बीच जो होता है वो मुझे मतलब वो सच में हैरान करता है।
आप उस अचानक आए बदलाव की बात कर रहे हैं।
हाँ, अध्याय 59 का माहौल इतना हताश करने वाला है। वहां वर्णन है कि लोग अंधेपन में दीवार टटोल रहे हैं, वे भालुओं की तरह गुर्रा रहे हैं
और कबूतरों की तरह विलाप कर रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन जैसे ही अध्याय 60 शुरू होता है, बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार घोषणा होती है, उठ, प्रकाशमान हो। यह बदलाव इतना अचानक है जैसे आप किसी घुटन भरे अंधेरे कमरे में हो और कोई अचानक आपको खींचकर चिलचिलाती धूप में खड़ा कर दे,
जहां आपकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया जाती हैं।
एकदम। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये रोशनी आई कहां से। मतलब क्या ये सिर्फ लोगों के मूड में आया कोई मनोवैज्ञानिक बदलाव था?
नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये बदलाव लोगों के अपने आंतरिक संकल्प का नतीजा नहीं था।
तो फिर किसका नतीजा था?
देखिए, इंसान ने खुद को उस दलदल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहा। इन दोनों अध्यायों के बीच जो तार्किक पुल है वो है डिवाइन वॉरियर, या कह ले एक ईश्वरीय मुक्तिदाता का हस्तक्षेप।
अच्छा, मतलब कोई बाहर से आकर इस चक्र को तोड़ता है।
ठीक यही बात है। जब इंसानी प्रयास पूरी तरह हार मान लेते हैं, तब वो मुक्तिदाता बीच में आता है और उस अंधकार को हराता है। उसके बिना वो अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता था।
प्रकाश उसी की उपस्थिति का परिणाम है। लेकिन मैंने नोट्स में ये भी पढ़ा कि इस अचानक आए प्रकाश और अंधकार के रिश्ते को लेकर अकादमिक दुनिया में भारी बहस छिड़ी हुई है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी अकादमिक बहस है। कई आधुनिक विद्वानों का मानना है कि अध्याय 59 और 60 अलग अलग समय पर लिखे गए थे।
मतलब उनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है।
उनका यही मानना है। वे कहते हैं कि ये अलग अलग लोगों के भाषण हैं, जिन्हें बाद में संपादकों ने बस एक साथ जोड़ दिया।
जैसे किसी ने दो अलग अलग नाटकों के पन्नों को गलती से एक ही जिल्द में बांध दिया हो।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड इस विचार का बहुत कड़ा विरोध करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ये कोई संपादन की गलती नहीं है।
तो ये जानबूझकर किया गया है।
एकदम, ये एक बेहद सोची समझी दार्शनिक निरंतरता है। उनका कहना है कि अगर आप मानव स्वभाव के पतन को समझे बिना सीधे प्रकाश की बात करेंगे तो वो बिल्कुल खोखला लगेगा। अंधकार की गहराई ही उस मुक्तिदाता के आने को अनिवार्य बनाती है।
ये बहुत ही दिलचस्प है। और उस मुक्तिदाता को इस ग्रंथ में जो नाम दिया गया है, इज़राइल का पवित्र, वो भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य लगता है।
हाँ, द होली वन ऑफ इज़राइल, ये नाम इस पूरी किताब पर हावी है।
मैंने एक आंकड़ा देखा जो सच में चौंकाने वाला था। पूरी बाइबल में ये शीर्षक कुल 31 बार आया है, लेकिन अकेले यशाया की इस एक पुस्तक में ये 25 या 26 बार इस्तेमाल हुआ है।
ये एक बहुत बड़ा अंतर है,
है ना? किसी एक ही लेखक ने इस एक विशिष्ट शब्द पर इतना भारी जोर क्यों दिया है?
इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ ओट्टो की किताब द आइडिया ऑफ द होली को समझना होगा।
अच्छा, उन्होंने पवित्रता को कैसे समझाया है?
ओटो ने इसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। वो बताते हैं कि इंसान के लिए पवित्र का मूल अर्थ सिर्फ अच्छा होना नहीं है, बल्कि यह एक विस्मयकारी रहस्य है।
विस्मयकारी रहस्य मतलब जो दुनिया की हर सामान्य चीज से पूरी तरह अलग हो।
बिल्कुल, एक ऐसा अलगाव जो इंसान को डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पवित्र सत्ता इंसान से इतनी दूर है कि उनके बीच कोई संबंध ही नहीं हो सकता?
देखिए, ओटो का सिद्धांत मुख्य रूप से उसी दूरी पर जोर देता है, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ट यहाँ एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यशाया की पुस्तक में इस पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मांडीय दूरी नहीं है।
तो फिर क्या है?
यहाँ पवित्रता का अर्थ एक बेहद विशिष्ट चरित्र से है। यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक नैतिक स्वभाव है, और वो सत्ता चाहती है कि इंसान भी उसी चरित्र को अपनाए।
मतलब शक्ति से ज्यादा जोर चरित्र पर है। लेकिन ये बात लोगों को एक बार में तो समझ नहीं आई होगी ना? इस किताब में समय के साथ लोगों का नजरिया कैसे बदलता है?
यह एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। अगर अध्याय एक को देखें तो लोग इस पवित्र का पूरी तरह से तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है।
और फिर जब हालात बिगड़ते,
अध्याय 30 तक पहुँचते पहुँचते लोग इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि वे अपने नबियों से चीख कर कहते हैं, इस इज़राइल के पवित्र की बातें हमारे सामने से हटाओ।
अरे, वे सचमुच वास्तविकता से आंखें चुराना चाहते थे।
बिल्कुल,
हमें इसके बारे में कुछ नहीं सुनना।
और कहानी यही नहीं रुकती। अध्याय 37 में एक विदेशी आक्रांता आता है, अश्शुर का राजा सन्हेरीब।
और वो क्या करता है?
सत्ता के नशे में चूर होकर वो इसी पवित्र का खुलेआम मजाक उड़ाता है। वो सोचता है कि जैसे उसने बाकी देशों को हराया है, वैसे ही ये भी कोई मामूली सत्ता है।
और यही सत्ता का अंधापन उसके विनाश का कारण बनता है।
एकदम सही।
और फिर ये सब पलटता है अध्याय 41 में जाकर,
जहां वो मुक्तिदाता बन जाता है।
हाँ, जिन लोगों ने पहले उसे नकारा था, उसी के लिए अध्याय 41 में कहा जाता है कि वही पवित्र उनका एकमात्र मुक्तिदाता है।
ये सबसे बड़ी विडंबना है।
जो सत्ता राजाओं को नष्ट कर सकती है, वही सत्ता अपने टूटे हुए लोगों को बचाने के लिए सबसे करीब आ जाती है। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
और जब ये घनिष्ठता स्थापित होती है तो लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है।
डॉक्टर ओसवाल्ट बताते हैं कि इस बदलाव को समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही गहरे हैं। मुझे एक वाक्य ने विशेष रूप से आकर्षित किया, तुम्हारी दीवारें उद्धार होंगी और तुम्हारे द्वार प्रशंसा।
यह इब्रानी साहित्य की उस काव्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है जो एक साथ कई अर्थ समेटे होती है।
हाँ, मैंने इसे एक प्राचीन किले की तरह सोचा। देखिए, किसी भी शहर की दीवारें दुश्मनों को बाहर रखती हैं, सुरक्षा देती हैं। अगर दीवारें उद्धार हैं तो सुरक्षा अब ईंट और पत्थर से नहीं आ रही,
बल्कि उस मुक्तिदाता से आ रही है।
बिल्कुल, लेकिन द्वार वो जगह है जहां से हम बाहरी दुनिया से संवाद करते हैं, अजनबी अंदर आते हैं। अगर द्वार प्रशंसा है तो दुनिया से जुड़ने का तरीका ही बदल गया। लेकिन मेरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है यहाँ।
पूछिए।
क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात है? मेरा मतलब है, क्या ये तथाकथित धार्मिकता सिर्फ एक लेबल है, जैसे अदालत में किसी अपराधी को तकनीकी खामी की वजह से जज बाइज्जत बरी कर दे?
मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं।
वह व्यक्ति बाहर से तो आजाद और सही घोषित हो गया, लेकिन अंदर से वह अब भी वही अपराधी है। क्या यहाँ धार्मिकता का यही मतलब है?
यह बहुत ही सटीक सवाल है, और डॉक्टर ओसवाल्ट इसका बहुत ही मजबूती से उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि यह मानना सबसे बड़ी भूल होगी कि धार्मिकता केवल एक कानूनी स्थिति है,
कोई अदालती छूट नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ओसवाल्ट के अनुसार वास्तविक धार्मिकता चरित्र का एक गहरा और मौलिक बदलाव है। यह उस विश्वास का परिणाम है जो इंसान के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को जड़ से बदल देता है।
तो यह अंदर से बाहर की ओर होने वाला बदलाव है,
शत प्रतिशत। और इसे स्पष्ट करने के लिए ऑसवाल्ड पेड़ों का रूपक देते हैं। अध्याय एक में इन लोगों की तुलना एक ऐसे सूखे जंगल से की गई थी जो बस जलने ही वाला है,
एक खोखला समाज जो एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो सकता है।
हाँ, लेकिन अब वही ग्रंथ उन्हें धार्मिकता के बांज वृक्ष या ओक ट्री कहता है। अब ओक का पेड़ क्यों? क्योंकि यह एक रात में नहीं उगता,
इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं।
बिल्कुल, ये तूफानों में मजबूती से खड़ा रहता है और अपनी छाया से दूसरों को राहत देता है। ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने खुद इस बगान को लगाया है ताकि ये फलदायक हो सके।
राख हो चुके जंगल से एक मजबूत बागान तक का सफर। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि ये जो सूखे पेड़ों को हरे पेड़ों में बदलने की प्रक्रिया है, ये आखिर करता कौन है?
और यहीं पर अध्याय 61 और मसीहा की अवधारणा सामने आती है।
मसीहा, जिसका मूल अर्थ ही है चुना हुआ व्यक्ति जो उद्धार के लिए नियुक्त किया गया हो।
एकदम सही, अध्याय 61 इसी मसीहा के मिशन का घोषणा पत्र है।
और यहीं पर ओसवाल्ड के नोट्स में बपतिस्मा का जिक्र आता है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये जल से जुड़ा एक शुद्धि अनुष्ठान है। नोट्स बताते हैं कि यीशु के बपतिस्मा के समय घोषणा होती है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है।
लेकिन यहां मुझे एक बड़ी तार्किक उलझन महसूस हुई। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि यीशु पहले से ही ईश्वरीय स्वरूप थे, तो उन्हें अचानक से नदी में जाकर पवित्र आत्मा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
ये उलझन बहुत स्वाभाविक है।
क्या उनमें पहले कोई कमी थी जो उस दिन पूरी हुई?
इतिहास में कई लोगों ने सवाल उठाया है। डॉक्टर ओसवाल्ड इस भ्रांति को दूर करने पर बहुत जोर देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इसे एक बहुत बड़ी वैचारिक त्रुटि मानना चाहिए कि मसीहा उस बपतिस्मा के क्षण में अचानक से ईश्वर बन गया।
मतलब उसमें कोई नई जादुई शक्ति नहीं आई?
बिल्कुल नहीं। ये अवधारणा कि वह पहले एक सामान्य इंसान था और उस दिन ईश्वरीय बन गया, इस ग्रंथ के मूल संदेश के एकदम खिलाफ है।
तो फिर उस पूरे अनुष्ठान का क्या फायदा था? वो क्या था?
वो एक सार्वजनिक प्रकटीकरण था, एक तरह का राज्याभिषेक समारोह समझ लीजिए। आत्मा का उतरना कोई शक्ति ग्रहण करना नहीं था, बल्कि दुनिया को एक संकेत देना था कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी।
अच्छा, तो ये उनके मिशन की आधिकारिक शुरुआत थी, उनके चरित्र में कोई नया बदलाव नहीं था।
बिल्कुल। और जब हम इस मसीहा के मिशन की बात करते हैं तो नोट्स में एक वाक्यांश बार बार गूंजता है, राख के बदले सुंदरता,
ब्यूटी फॉर एशेज। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है,
लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा है। ये मसीहा के पूरे कार्य का सार है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, बंदियों को आजाद करना, शोक में डूबे लोगों को सांत्वना देना।
लेकिन ये राख के बदले सुंदरता का एक बहुत ही कड़वा ऐतिहासिक संदर्भ भी तो है जो अध्याय 3 से जुड़ता है।
हाँ, अध्याय 3 में यरूशलेम की उन महिलाओं का वर्णन है जो अपनी अपार संपत्ति और महंगे आभूषणों पर बेहद घमंड करती थीं।
उन्हें लगता था कि उनका ये रुतबा कभी खत्म नहीं होगा।
पर जब समाज का नैतिक पतन होता है और विनाश आता है, तो उस सारी चकाचौंध की जगह उन्हें गंजापन मिलता है। सुंदर कमरबंदों की जगह उन्हें रस्सियों से बांधकर दास बना लिया जाता है।
यानी जो कुछ भी उनके पास था वो सब राख हो गया। ये अत्यधिक अपमान की तस्वीर है।
हाँ, और मसीहा का मिशन इसी राख को उलटकर फिर से सुंदरता और सम्मान वापस लाना है। लेकिन ये होता कैसे है?
ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा तो नहीं है?
एकदम नहीं। ओसवाल्ड इसका सीधा संबंध गुड फ्राइडे की ऐतिहासिक घटना से जोड़ते हैं, जहां मसीहा ने अत्यधिक कष्ट सहे,
सूली पर चढ़ने वाली घटना।
सही कहा। ओसवाल्ड समझाते हैं कि मसीहा ने एक दर्शक की तरह बाहर से खड़े होकर सुंदरता नहीं बांटी, उसने उस समुदाय के सारे दुखों, उनके दर्द की राख को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने ऊपर ले लिया।
जब कोई निर्दोष सत्ता दूसरों के दर्द को अपने ऊपर ले लेती है, तो वो उस पीड़ा के चक्र को तोड़ देती है
और उसी दर्द को सोख लेने की प्रक्रिया से वो नई सुंदरता पैदा होती है।
यह एक बहुत ही गहन मनोवैज्ञानिक विचार है। सच्चा बदलाव अक्सर किसी और के द्वारा आपका दर्द सहने से ही आता है।
और नोट्स के अगले हिस्से में डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि जब ये बदलाव होता है, तो जो विदेशी राष्ट्र पहले इन लोगों पर अत्याचार करते थे, वे अब आकर इनके सेवक बनेंगे
और इनके खेत जोतेंगे। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे ये सीधा सीधा बदले की कहानी लगी। कल तुमने हमें गुलाम बनाया था, आज हम तुम पर राज करेंगे। क्या ये सिर्फ सत्ता का एक नया खेल नहीं है?
कोई भी साधारण पाठक इसे बदले की भावना के रूप में ही देखेगा, लेकिन अगर आप इसे ऐतिहासिक चश्मे से देखें तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है।
तो इसके पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है?
इसे समझने के लिए निर्वासन के बाद की स्थिति की कल्पना करनी होगी। जब ये लोग उजड़े हुए शहर में लौटे तो वे पूरी तरह टूट चुके थे। न राजा था, न सेना,
वे विश्व पटल पर शून्य थे।
ऐसे में उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया पर तलवार से राज करना उनका असली उद्देश्य था ही नहीं। उनका उद्देश्य वो था जो एग्जोडस या निर्गमन की कहानी के अध्याय 19 में तय किया गया था।
मतलब उन्हें दुनिया और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ बनना था।
बिल्कुल, उन्हें पुजारियों का एक राष्ट्र बनना था। एक पुजारी का काम सांसारिक धन बटोरना नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना होता है।
तो विदेशी लोगों के उनके खेत जोतने का इससे क्या लेना देना है?
डॉक्टर ऑसवर्ल्ड स्पष्ट करते हैं कि जब ये लोग सही मायनों में दुनिया के लिए प्रकाश बनेंगे तो वे विदेशी राष्ट्र स्वेच्छा से आकर इनके सांसारिक काम संभाल लेंगे।
अच्छा।
ताकि ये पुजारी अपने मूल काम पर ध्यान दे सकें।
बिल्कुल, ये कोई नई तरह की गुलामी नहीं है, ये एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। विदेशी राष्ट्र इनकी भौतिक जरूरतें पूरी करेंगे और बदले में ये उन राष्ट्रों की आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करेंगे।
यहाँ कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, ये तो पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। बदले की भावना की जगह यहाँ एक आपसी सहयोग की बात हो रही है।
और इन विचारों को इतने प्रभावशाली ढंग से पेश करने में उस इब्रानी कविता का भी बड़ा हाथ है जिसके बारे में ऑसवर्ल्ड बात करते हैं।
हाँ, इब्रानी कविता की शैली अन्य साहित्यों से काफी अलग है।
इसमें तुकबंदी से ज्यादा विचारों के समानांतर चलने पर जोर दिया जाता है। एक ही विचार को दो अलग अलग पंक्तियों में कहा जाता है। जैसे इस ग्रंथ में धार्मिकता और उद्धार को बार बार एक साथ रखा गया है।
एकदम सटीक उदाहरण। ओसवर्ल्ड बताते हैं कि ये दोनों शब्द समानार्थी की तरह काम करते हैं। उद्धार के बिना धार्मिकता संभव नहीं है। इंसान केवल अपनी इच्छा शक्ति से धर्मी नहीं बन सकता,
उसे उस मुक्तिदाता की जरूरत है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है, है ना?
बिल्कुल, उद्धार का अंतिम अर्थ ही है धार्मिकता का जीवन जीना। अगर कोई दावा करता है कि उसका उद्धार हो गया है लेकिन उसके चरित्र में वो बदलाव नहीं दिखता तो उसका दावा पूरी तरह खोखला है।
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यशाया की यह महान सिम्फनी मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक खाका है।
हाँ, यह हमें दिखाता है कि कैसे टूटे हुए लोगों को एक बिल्कुल नई पहचान मिलती है।
और ये पहचान उन्हें इसलिए नहीं दी जाती कि वे अहंकारी हो जाएं, बल्कि इसलिए ताकि वे अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए एक लालटेन बन सकें।
और आज के समय में भी ये विचार उतना ही प्रासंगिक है। सबसे बड़ा बदलाव अक्सर तब आता है जब हम सबसे गहरी निराशा का सामना कर चुके होते हैं। बिना उस अंधेरे के उस प्रकाश का कोई मोल नहीं है।
एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो इस प्राचीन ग्रंथ के बिल्कुल अंत में आता है।
आप उस नए नाम के दिए जाने वाले हिस्से की बात कर रहे हैं?
हाँ, नोट्स बताते हैं कि अंत में इस तबाह हो चुके समुदाय को एक नया नाम दिया जाता है, हेब्जिबा,
जिसका शाब्दिक अर्थ है मेरा आनंद उसमें है।
बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी समुदाय को, जिसे इतिहास ने पूरी तरह से नकार दिया हो, उसे अचानक एक ऐसी नई पहचान दी जाती है जो पूर्ण स्वीकार्यता को दर्शाती है, तो यह उसके वजूद को कैसे बदल देता है?
ये वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है।
क्या केवल एक नया नाम जिसमें कोई आरोप न हो हमारे सबसे दर्दनाक इतिहास को फिर से लिखने की शक्ति रखता है? क्या पूर्ण स्वीकार्यता सच में राग के ढेरों को हटाकर एक ऐसी सुंदरता पैदा कर सकती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उस घने अंधेरे कमरे को हमेशा के लिए रोशन कर दे?
यह एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जिस पर विचार करना किसी के लिए भी बहुत रोचक हो सकता है।
बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। सीखते रहिए।